क्या हो अगर, मतलब क्या हो अगर दुनिया के जो सबसे प्राचीन और प्रभावशाली धर्म ग्रंथ हैं, उनको किसी विशाल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह पढ़ा जाए?
जैसे कि
हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी होती है ना, जैसे मार्वल, जहाँ हर नई कहानी के अंदर किसी पुरानी कहानी का कोई सुराग या कोई छिपा हुआ रेफरेंस होता है।
बिल्कुल एकदम सही।
मतलब जब भी कोई नई फिल्म आती है तो उसमें अक्सर पिछली फिल्मों के कुछ पुराने डायलॉग्स होते हैं या कुछ ऐसे विजुअल संकेत होते हैं जो बाद वाली फिल्मों को पुरानी फिल्मों से जोड़कर एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई कहानी बना देते हैं।
हाँ, एक महाकाव्य जैसी कहानी।
एग्जैक्टली। अगर जो दर्शक हैं वो उन सुरागों को नहीं भी पकड़ पाते तो भी फिल्म तो एंजॉय कर ही सकते हैं। लेकिन अगर अगर आप उन छिपे हुए संकेतों को समझ लें तो कहानी को जो असली रोमांच है और उसकी गहराई है वो मतलब कई गुना बढ़ जाती है।
जी बिल्कुल बढ़ जाती है।
तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम कुछ ऐसा ही रहस्य सुलझाने जा रहे हैं, लेकिन फिल्मों के साथ नहीं बल्कि बाइबल के प्राचीन ग्रंथों के साथ। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और ये बहुत ही दिलचस्प है।
हाँ, और मैं कहूंगा कि आपकी ये जो तुलना है ना फिल्मों वाली, ये इस विषय की जटिलता को समझने के लिए एकदम एकदम परफेक्ट है।
शुक्रिया। तो आज का जो हमारा ये डीप डाइव है, ये डॉक्टर मैथ्यू एस हार्मन के एक बहुत ही शानदार व्याख्यान पर आधारित है। विषय है बाइबल द्वारा बाइबल का उपयोग।
जी, जिसे अकादमिक दुनिया में धर्म ग्रंथों की धर्मशास्त्रीय व्याख्या या स्क्रिप्चरल एक्सेजेसिस ऑफ स्क्रिप्चर भी कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो बाद के बाइबल के लेखक थे उन्होंने शून्य में बैठकर कुछ नया नहीं लिख दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि बस एक दिन उठे और लिखना शुरू कर दिया।
राइट, उनके पास पहले से कुछ सामग्री थी।
बिल्कुल, उन्होंने जानबूझकर जो पुराने धर्म ग्रंथ थे उनकी व्याख्या की, उनको नए संदर्भों में कोट किया और जो पुरानी सच्चाइयां थी उनको नई परिस्थितियों में एक बिल्कुल नया रूप दिया।
और इससे पहले कि हम इस चर्चा में और गहराई में जाएं, मैं सुनने वालों के लिए स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज की हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह से निष्पक्ष और अकादमिक है।
हाँ, ये जरूरी है।
बिल्कुल, हमारे जो भी स्रोत हैं वो विशुद्ध रूप से डॉक्टर हार्मन के व्याख्यान और उनके साहित्यिक विश्लेषण पर ही आधारित हैं। हम यहाँ किसी विशेष धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं।
जी,
हमारा जो मेन गोल है वो बस ये समझना है कि प्राचीन काल में लेखक किस तरह से एक दूसरे की सामग्री का उपयोग करके एक इतना विशाल साहित्यिक और वैचारिक ढांचा तैयार कर रहे थे।
और ये जो विश्लेषण है ना,
हाँ,
इसका महत्व सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को रट लेने तक सीमित नहीं है।
तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
देखिए, ये अध्ययन हमें ये समझने की एक नई दृष्टि देता है कि आखिर ये पूरा ग्रंथ, जिसे अलग अलग युगों में कई अलग अलग लेखकों ने लिखा, ये शुरुआत से लेकर अंत तक आपस में जुड़ा कैसे हुआ है।
मतलब ये कोई अलग अलग किताबों का ढेर नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये हमें उस प्राचीन मानसिकता के भीतर झांकने का मौका देता है जिसके साथ उन लेखकों ने अपने से पहले के लेखकों को पढ़ा, समझा और फिर उसे अपनी उस तत्कालीन दुनिया के लिए प्रासंगिक बनाया।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इस पूरी चर्चा की जो बेसिक फाउंडेशन है, जो वैचारिक नींव है, वो क्या है? मतलब जब बाइबल का उपयोग करने की बात आती है तो एक आम धारणा तो यही होती है ना कि जो नए नियम के यानी न्यू टेस्टमेंट के लेखक थे उन्होंने पुराने नियम से कुछ लाइनें उठाई और अपने लेखों में चिपका दी।
हाँ, ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही सतही धारणा है।
अच्छा जी।
वास्तविकता में ये सिर्फ नए नियम द्वारा पुराने नियम को कोट करना तक सीमित नहीं है। डॉक्टर हार्मन अपने शोध में बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था।
मतलब पुराने नियम के अंदर ही।
एग्जैक्टली, पुराने नियम के ही बाद के लेखकों ने पुराने नियम के शुरुआती हिस्सों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया।
वाह।
इसे समझने के लिए हम एक पत्रस यानी 1 पीटर 1:10-12 का उदाहरण ले सकते हैं। वहां बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने पिछली भविष्यवाणियों पर सावधानी पूर्वक शोध किया था।
एक मिनट, शोध किया था मतलब वो रिसर्च कर रहे थे?
हाँ, वो सिर्फ अलौकिक रूप से हवा में भविष्यवाणियां नहीं कर रहे थे, वो वास्तव में अपने से पहले आए लोगों के ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने वाले प्राचीन रिसर्च स्कॉलर्स की तरह काम कर रहे थे।
ये तो एक बिल्कुल ही नया नजरिया है सोचने का। मतलब अक्सर हम भविष्यद्वक्ताओं को ऐसे देखते हैं जैसे वो बस किसी ईश्वरीय प्रेरणा से अचानक कुछ बोल रहे हों, लेकिन यहाँ तो वो बाकायदा पिछले साहित्यों का अध्ययन कर रहे हैं।
बिल्कुल।
क्या इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक उदाहरण है जहाँ हम इस प्रक्रिया को वास्तव में काम करते हुए देख सके?
हाँ, यशाया यानी आइजाया अध्याय 6, इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध दृश्य है जहां परमेश्वर यशाया से लोगों के दिलों को सुस्त करने, कान भारी करने और आंखें अंधी करने की बात कहते हैं।
मैंने ये पढ़ा है
जी, और अधिकांश जो पाठक हैं वो इसे बस एक स्वतंत्र चेतावनी मानकर आगे बढ़ जाते हैं।
राइट, ऐसा लगता है कि वो बस उस समय के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं।
लेकिन यदि हम इसकी साहित्यिक संरचना का विश्लेषण करें तो ये जो शब्दावली है ये वास्तव में व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनमी 29 से ली गई है।
अच्छा, सेम शब्द है।
बिल्कुल, व्यवस्था विवरण में बिल्कुल ऐसे ही शब्दों का प्रयोग इसराइलियों की जो पिछली असफलताएं थी उनको दर्शाने के लिए किया गया था।
ओके, तो यशाया ये कोई संयोग से नहीं लिख रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानबूझकर पुरानी शब्दावली का उपयोग करके अपने समकालीन पाठकों को याद दिला रहे हैं कि देखिए इतिहास खुद को दोहरा रहा है।
वाह, ये बहुत दिलचस्प है। और यहाँ जो बात मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो ये है कि जब ये परंपरा नए नियम तक पहुँचती है तो व्याख्या का ये तरीका और भी ज्यादा मुखर हो जाता है।
जी, बहुत स्पष्ट हो जाता है।
मैंने पढ़ा था कि रोमियो 10:6-8 में जो लेखक पौलुस हैं, वो व्यवस्था विवरण 30 का उपयोग करते हैं जहां लिखा है कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा। लेकिन पौलुस वहां रुकते नहीं है, वो सिर्फ पुराने पाठ को दोहरा नहीं रहे हैं बल्कि वो स्पष्ट रूप से उसके अर्थ की अपनी व्याख्या जोड़ देते हैं।
हाँ, वो कहते हैं अर्थात मसीह को नीचे लाने के लिए।
राइट, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर हम आज की आधुनिक अकादमिक दुनिया की बात करें, अगर कोई लेखक किसी और की सामग्री लेता है और उसमें अपने शब्द जोड़कर उसे नए अर्थ में पेश करता है
तो उसे प्लेजियरिज्म कहा जाएगा।
हाँ, साहित्यिक चोरी, या फिर कहा जाएगा कि वो मूल अर्थ के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो क्या प्राचीन लेखकों के पास अपनी कोई ओरिजिनल सामग्री नहीं थी?
देखिए, यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमें प्राचीन और आधुनिक मानसिकता का जो अंतर है उसे समझना होगा।
ओके,
प्राचीन दुनिया में ये जो साहित्यिक चोरी या प्लेजियरिज्म की जो आधुनिक अवधारणा है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था।
मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था।
बात फर्क पड़ने की नहीं है, जब पौलुस या यशाया पुराने शब्दों का उपयोग करते हैं तो वो किसी की बौद्धिक संपदा चुरा नहीं रहे थे, बल्कि वो एक बेहद परिष्कृत व्याख्यात्मक कदम उठा रहे थे।
अच्छा, तो वो कर क्या रहे थे एग्जैक्टली?
वो अपने पाठकों को एक वैचारिक संकेत दे रहे होते हैं। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि अतीत की कोई जो स्थापित सच्चाई है वो आज की नई परिस्थिति में कैसे लागू होती है। वो पुराने शब्दों में एक नया अर्थ और नई प्रासंगिकता फूंक रहे थे जो उस समय के साहित्य निर्माण का एक बहुत ही सम्मानित और स्वीकार्य तरीका था।
तो ये एक तरह से एक मजबूत पहले से स्थापित वैचारिक नींव पर एक नई इमारत खड़ी करने जैसा।
आप सही, बिल्कुल सही।
लेकिन अगर मैं एक आम जिज्ञासु पाठक हूँ जो आज इन ग्रंथों का अध्ययन कर रही है, तो मेरे लिए लेखकों के बीच की इस प्राचीन बातचीत को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है?
बहुत फर्क पड़ता है। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आप उस पाठ से क्या अर्थ निकालते हैं। डॉक्टर हार्मन इसे समझाने के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं।
वो कौन से हैं?
पहला है एक्सजीसिस या पाठ की सूक्ष्म व्याख्या। इसका सीधा सा मतलब है कि मूल पाठ क्या कह रहा है ये समझना। जैसे हमने रोमियो 10 के बारे में बात की।
हाँ।
उसे व्यवस्था विवरण 30 के मूल संवर्ग के बिना समझना लगभग असंभव है। पौलुस का तर्क हवा में नहीं है, वो सीधे तौर पर उस पुराने पाठ पर टिका है।
समझ गई। और दूसरा?
दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिब्लिकल थियोलॉजी या बाइबल का ऐतिहासिक धर्मशास्त्र, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पूरी जो ऐतिहासिक कहानी है उसको एक धागे में पिरोता है।
तो अगर बिब्लिकल थियोलॉजी हमें उस पूरी कहानी की एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन देती है तो इसका मतलब है कि हम इसके आधार पर कुछ बड़े यूनिवर्सल विषयों पर भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
जी।
जैसे ईश्वर का स्वभाव क्या है, या मानवता, नैतिकता, जिसे शायद हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहेंगे, जहां हम इन विषयों को व्यवस्थित करते हैं।
ये एकदम सही विश्लेषण है आपका। सिस्टमैटिक थियोलॉजी इन्हीं ऐतिहासिक धागों से बुनी जाती है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि कोई पाठक इन प्राचीन नियमों को आज के आधुनिक जीवन में कैसे लागू करता है।
वो कैसे?
डॉक्टर हार्मन इसका एक बहुत ही व्यवहारिक और सटीक उदाहरण देते हैं, जैसे लेवे व्यवस्था यानी लेविटिकस की पुस्तक है। उसमें पशु बलि के बहुत सारे और बेहद विस्तृत नियम दिए गए हैं।
हाँ, बहुत सारे नियम हैं।
लेकिन आज कोई भी आधुनिक पाठक उन पशु बलि के नियमों का पालन नहीं करता।
हाँ, जाहिर है, क्योंकि वो नियम आधुनिक समाज और व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत माने जाते हैं।
सही, लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास पैदा होता है। वही आधुनिक पाठक जब एक पत्रस की पुस्तक पढ़ता है तो पाता है कि वहां उसी लेवे व्यवस्था के अध्याय 11 का कोटेशन दिया गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
ओह, तो एक ही किताब से?
हाँ, और पाठक इस नैतिक नियम को तुरंत अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता है, तो एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल उठता है
कि एक ही पुरानी पुस्तक के एक हिस्से यानी पशु बलि को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है और दूसरे हिस्से यानी पवित्रता को शाश्वत नियम मान लिया जाता है।
बिल्कुल, ऐसा क्यों? धर्म ग्रंथों का एक दूसरे द्वारा उपयोग ही हमें ये बताता है कि किन नियमों में निरंतरता है और किन में नहीं।
मतलब नए नियम के लेखकों ने खुद ही पुराने नियम की व्याख्या करके ये तय करने में मदद की कि नई व्यवस्था में क्या लागू होता है और क्या नहीं।
हाँ, उन्होंने बताया कि क्या प्रतीकात्मक था और क्या शाश्वत है।
ये स्पष्टीकरण तो पाठ को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये धर्म ग्रंथों को असंबद्ध नियमों की एक किताब के बजाय एक गतिशील और सुसंगत संदेश के रूप में देखने में मदद करता है।
जी,
लेकिन अगर ये अंतर संबंध इतना ही मौलिक है तो आधुनिक विद्वानों के लिए इन संबंधों को खोजना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा क्या है जो इस पूरी प्रक्रिया को एक पहेली बना देता है?
देखिए, इस पहेली को सुलझाना वास्तव में एक डिटेक्टिव के काम जैसा है, और इसकी राह में इतिहास, भाषा और इंसान की अपनी मनोवैज्ञानिक सोच की बहुत सारी रुकावटें हैं।
मनोवैज्ञानिक रुकावटें?
हाँ, डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि सबसे पहली चुनौती है पूर्वाग्रह या प्रीसपोजिशंस। मतलब जब भी कोई व्यक्ति किसी पाठ की व्याख्या करता है तो वो खाली दिमाग से नहीं आता, उसकी अपनी कुछ दार्शनिक या वैचारिक मान्यताएं होती हैं।
क्या इसका मतलब ये है कि किसी की व्यक्तिगत मान्यताएं ये तय करती है कि वो पाठ को कैसे पढ़ेगा?
बिल्कुल,
जैसे कि कोई चमत्कारों या अलौकिक घटनाओं को कैसे देखता है।
एकदम सही पकड़े हैं आप। मान लीजिए किसी प्राचीन पाठ में कोई भविष्यवाणी है या किसी अलौकिक चमत्कार का वर्णन है।
ठीक है,
अब यदि कोई ऐसा विद्वान उसे पढ़ रहा है जिसका विश्व दृष्टिकोण भौतिकवादी है, जो ईश्वरीय चमत्कारों में विश्वास नहीं करता,
तो वो उसे चमत्कार नहीं मानेगा।
हाँ, वो उसकी व्याख्या किसी आस्तिक व्यक्ति से बिल्कुल अलग ढंग से करेगा। भौतिकवादी विद्वान उसे एक बाद में जोड़ा गया रूपक या कोई साहित्यिक उपकरण मान सकता है, जबकि दूसरा उसे एक ऐतिहासिक तथ्य मानेगा।
ओ, तो ये शुरुआती बिंदु ही पूरे विश्लेषण की दिशा बदल देता है।
जी,
और केवल दार्शनिक पूर्वाग्रह ही नहीं, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण यानी डेटिंग भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है।
हाँ, बहुत बड़ा।
पुराने नियम में ये तय करना भी मुश्किल होता है कि कौन सी पुस्तक पहले लिखी गई थी, जैसे योएल यानी जोएल की पुस्तक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण सुझाव देते हैं कि ये बेबीलोन के निर्वासन से पहले लिखी गई, जबकि कुछ कहते हैं कि बाद में। तो अगर योएल और यशाया की किताबों में एक जैसे शब्द हैं, तो ये साबित करना लगभग असंभव हो जाता है कि योएल ने यशाया से उधार लिया या यशाया ने योएल से।
राइट।
और ऐतिहासिक कालक्रम की ये अनिश्चितता तो एक चुनौती है ही, इसमें जो प्राचीन संदर्भ हैं, एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट्स, उनको समझना एक और जटिल परत जोड़ देता है।
वो कैसे?
जब नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स जैसी पुस्तक का अध्ययन किया जाता है, तो विद्वानों को प्राचीन निकट पूर्वी साहित्य जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया के जो साहित्य हैं, उनमें बिल्कुल वैसी ही ज्ञानवर्धक बातें देखने को मिलती हैं।
अच्छा,
तो अन्य संस्कृतियों में भी वैसी ही बातें हैं?
हाँ, तो अब सवाल यह है कि क्या नीति वचन का जो लेखक है वो उन अन्य पड़ोसी संस्कृतियों से सामग्री उधार ले रहा था, या फिर वो सभी प्राचीन सभ्यताएं एक ही सामान्य मानवीय ज्ञान के भंडार से लिख रही थीं?
तो इन सब जटिलताओं का मतलब क्या है? ये पूरी स्थिति तो मुझे बचपन के उस टेलीफोन खेल की याद दिला रही है।
टेलीफोन खेल?
हाँ, जहाँ एक बच्चा दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाता है, फिर वो तीसरे को, और लाइन के अंत तक पहुँचते पहुँचते पूरा वाक्य ही कुछ का कुछ हो जाता है।
हाँ हाँ, बिल्कुल।
लेकिन यहाँ ये खेल कुछ मिनटों का नहीं है, बल्कि सदियों तक चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया में भाषाएं भी बदल रही हैं, क्योंकि पुराना नियम मूल रूप से इब्रानी यानी हिब्रू और अरामी में लिखा गया था, और नया नियम ग्रीक में।
आपका ये टेलीफोन वाला सादृश्य यहाँ बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि भाषा का ये जो बदलाव है ना, यही शायद सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। नए नियम के जो लेखक थे वो अक्सर पुराने नियम के मूल इब्रानी पाठ का सीधा उपयोग नहीं करते थे, बल्कि वो उस समय जो प्रचलित पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद था, जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है, उसका उपयोग करते थे।
और अनुवाद की क्वालिटी कभी भी शत प्रतिशत एक जैसी नहीं होती। सेप्टुआजेंट में भी अनुवाद के अलग अलग तरीके अपनाए गए होंगे।
यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सेप्टुआजेंट के कुछ हिस्से बहुत ही कठोर और शाब्दिक, मतलब वर्ड फॉर वर्ड अनुवाद थे,
जैसे आज न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल या NASB है।
बिल्कुल, जो मूल भाषा के व्याकरण और हर एक शब्द को ज्यों का त्यों रखने की कोशिश करता है, भले ही वो पढ़ने में थोड़ा अजीब ही क्यों ना लगे।
हाँ, वो काफी कड़क लगता है पढ़ने में।
लेकिन उसी सेप्टुआजेंट के कुछ अन्य हिस्से न्यू लिविंग ट्रांसलेशन या NLT की तरह डायनामिक अनुवाद थे, जहाँ शब्दों के बजाय मूल अर्थ और भाव पर ध्यान दिया गया।
और मुझे लगता है इसके ऊपर टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की एक और समस्या है ना?
जी, सदियों बाद जब शास्त्रियों यानी स्क्राइब्स ने देखा कि नए नियम का कोई लेखक पुराने नियम का कोटेशन दे रहा है, लेकिन पुराने नियम के मूल इब्रानी पाठ और नए नियम के कोटेशन में एक शब्द का अंतर है,
तो उन्होंने क्या किया?
तो उन शास्त्रियों ने अक्सर मदद करने के इरादे से दोनों ग्रंथों में एक रूपता लाने के लिए अपनी तरफ से वो शब्द जोड़ दिया या बदल दिया।
क्या बात कर रहे, मतलब उन्होंने टेलीफोन के खेल के बीच में ही वाक्य को सुधारने की कोशिश की, जिससे मूल सुराग ही मिट गए।
हाँ, उन्होंने सोचा वो मदद कर रहे हैं, लेकिन
ये तो स्थिति को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। अगर अनुवाद, इतिहास और मानवीय हस्तक्षेप की इतनी सारी परतें हैं, तो फिर जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, वो ये कैसे साबित करते हैं कि कोई लेखक जानबूझकर पुराने पाठ का रेफरेंस दे रहा था?
इसके लिए डॉक्टर हामन और गैरी स्निट्जर की जो पुस्तक है, वो 7 व्याख्यात्मक विकल्पों या हार्मोनियटल चॉइसेस की एक रूपरेखा देती है।
चलिए उनमें से कुछ प्रमुख विकल्पों पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहला है सिक्वेस्टर्ड वर्सेस कनेक्टेड, यानी अलग बनाम जुड़ा हुआ।
जी, अकादमिक दुनिया में अक्सर एक समस्या देखी जाती है जिसे हम साइलोज या डिब्बों में सोचना कहते हैं।
कैसे?
एक समूह है जो केवल पुराने नियम के अध्ययन में अपना जीवन बिता देता है, और दूसरा समूह केवल नए नियम में। वो दोनों को बिल्कुल अलग अलग यानी सिक्वेस्टर्ड रखते हैं।
लेकिन ये तो गलत अप्रोच लगती है।
डॉक्टर हार्मिन का भी यही दृढ़ तर्क है कि ये एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। ग्रंथों को एक साथ यानी कनेक्टेड रूप में पढ़ा जाना चाहिए,
क्योंकि नए नियम के लेखक कोई नई तरकीब थोड़ी ईजाद कर रहे थे।
बिल्कुल, वो ठीक वही व्याख्यात्मक परंपरा निभा रहे थे जो पुराने नियम के लेखक सदियों से अपने से पहले के लेखकों के साथ करते आ रहे थे।
और एक और विकल्प जो इस चर्चा में बहुत अहम लगता है, वो है आर्ट वर्सेस साइंस, कला बनाम विज्ञान।
हाँ,
पर निर्भर करता है।
इस मुद्दे पर तो विद्वानों के बीच एक बहुत गहरा वैचारिक विभाजन है।
एक पक्ष से पूरी तरह से विज्ञान मानता है।
विज्ञान कैसे?
वो कठोर मापदंड तय करते हैं, जैसे दुर्लभ शब्दों की गिनती करते हैं, व्याकरणिक संरचनाओं का मिलान करते हैं। अगर कोई वाक्य निश्चित संख्या में पुराने शब्दों से मेल नहीं खाता, तो वो उसे रेफरेंस मानने से साफ इनकार कर देते हैं।
और दूसरा पक्ष?
दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे एक कला मानते हैं। वो ग्रंथों के बीच एक ढीले वैचारिक जुड़ाव या भाव को देखकर ही रेफरेंस की घोषणा कर देते हैं।
तो सही तरीका क्या है?
डॉक्टर हार्मिन और स्निट्जर का मानना है कि सही तरीका इन दोनों का संतुलन है। आपको वैज्ञानिक कठोरता भी चाहिए, जैसे शब्द मिलान, लेकिन ग्रंथों में डूबे रहने के बाद जो एक साहित्यिक संवेदनशीलता विकसित होती है, वो भी उतनी ही जरूरी है। एक संतुलन होना चाहिए। अच्छा, इस अध्ययन में एक बहुत ही भारी भरकम और दिलचस्प शब्द सामने आता है, प्रोसूपलॉजिकल एक्सेजेसिस।
हाँ, ये बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है।
जहां तक मैंने पढ़ा है, प्रोसूपॉस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है चेहरा या व्यक्ति। तो ये तब होता है ना जब बाद का लेखक पहले के किसी कथन को उठाता है और उसे एक नए वक्ता के मुंह में रख देता है।
बिल्कुल, यानी उसे एक नया चेहरा दे देता है।
जैसे भजनों यानी साम्स में मूल रूप से राजा द्वारा कहे गए शब्द इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर या मसीह के शब्द बन जाते हैं। ये प्रक्रिया ठीक ठीक कैसे काम करती है?
ये प्राचीन व्याख्या का एक बेहद रचनात्मक रूप है। आप देखें, प्राचीन लेखक ये मानते थे कि ग्रंथों के भीतर कई आवाजें छुपी हुई हैं।
कई आवाजें?
हाँ, जब वो भजनों को पढ़ते थे तो वो उसे केवल एक मानव राजा की पुकार के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वो मानते थे कि एक उच्चतर ईश्वरीय आवाज उन शब्दों के माध्यम से बोल रही है।
ओहो, तो इसलिए वो उन शब्दों को एक नया चेहरा पहना देते थे।
जी, और ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल खड़ा करती है, जो उनके एक और विकल्प एडजस्टिंग मीनिंग वर्सेज एडवांसमेंट ऑफ रेवलेशन से जुड़ता है।
तो मूल सवाल ये है कि जब कोई बाद का लेखक किसी पुरानी बात को नया चेहरा या नया अर्थ देता है, तो क्या वो अपनी मर्जी से मूल अर्थ को बदल रहा है, यानी एडजस्टिंग मीनिंग, या फिर वो उस पुराने पाठ के किसी ऐसे गहरे अर्थ को उजागर कर रहा है जो हमेशा से वही मौजूद था लेकिन पहले के लोगों को समझ नहीं आया, जिसे एडवांसमेंट ऑफ रेवलेशन कहेंगे।
बिल्कुल सही। क्या ये अर्थ में बदलाव है या अर्थ का विकास है? मैं कहूंगा कि ये इस पूरे अध्ययन का शायद सबसे गहन दार्शनिक प्रश्न है।
तो जवाब क्या है?
यदि इसे केवल अर्थ में बदलाव माना जाए तो ये लेखकों की मनमानी लगेगी, लेकिन अधिकांश धर्मशास्त्री इसे अर्थ का विकास यानी एडवांसमेंट मानते हैं।
जैसे कि समय के साथ कुछ नया खुल रहा हो।
हाँ, जहाँ इतिहास के आगे बढ़ने के साथ पुराने पाठों का पूरा अर्थ धीरे धीरे सामने आता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज समय के साथ एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। बीज में पेड़ हमेशा से था, बस उसे प्रकट होने में समय लगा।
क्या बात है, बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ये। तो अगर डोनर यानी देने वाला पार्ट और रिसेप्टर यानी ग्रहण करने वाला पार्ट मिलकर एक नई व्याख्या को जन्म देते हैं, तो एक आम पाठक जिसे ग्रीक या इब्रानी जैसी प्राचीन भाषाओं का कोई ज्ञान नहीं है, वो इस जटिल प्रक्रिया को खुद कैसे देख सकता है?
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है।
क्या इसके लिए कोई व्यावहारिक ढांचा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, इसके लिए डॉक्टर हार्मन एक बहुत ही उपयोगी ढांचा देते हैं, जिसे वो प्रभाव का स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं।
स्पेक्ट्रम?
जी, ये पहचानने का तरीका है कि एक पार्ट का दूसरे पर प्रभाव कितना स्पष्ट या कितना गहरा है। इस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर साइटेशन यानी स्पष्ट उद्धरण होता है,
जहां लेखक स्पष्ट रूप से कहता है जैसा कि फला किताब में लिखा है।
बिल्कुल, और वो पुराने शब्दों की सटीक नकल करता है। इसे पहचानना सबसे आसान है।
और उसके ठीक बाद स्पेक्ट्रम में अलूजन या संकेत आता है ना, जहां कोई सीधा नाम नहीं लिया जाता लेकिन कुछ मिलते जुलते दुर्लभ शब्द होते हैं जो पाठकों को स्पष्ट इशारा करते हैं।
सही है, लेकिन जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ते हैं चीजें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं। अगला स्तर है एको यानी गूंज।
गूंज मतलब बहुत ही हल्का संकेत।
हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म समानता होती है, शायद सिर्फ एक या दो शब्द जो किसी पुरानी घटना की याद दिलाते हैं। और यहाँ विद्वानों के बीच भी अक्सर तीखी बहस होती है कि क्या ये सच में कोई जानबूझकर दिया गया रेफरेंस है या महज इत्तेफाक।
और स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर क्या होता है?
दूसरे छोर पर होता है थीमैटिक सिमिलैरिटीज यानी समान विषय, जहां कोई विशिष्ट शब्द तो मेल नहीं खाता लेकिन बात उसी व्यापक विषय या विचार पर हो रही होती है।
ओके, और अगर हम इसे उस प्रक्रिया में लागू करें जिससे स्रोत सामग्री में एक्सेजेटिकल अल्यूजन्स कहा गया है, तो इसे समझना वाकई एक विश्लेषणात्मक काम है।
जी,
मैंने पढ़ा कि इसके तीन चरण होते हैं, डोनर टेक्स्ट, रिसेप्टर टेक्स्ट और एक्सेजेटिकल आउटकम।
बिल्कुल,
इसे यशाया वाले उस पुराने उदाहरण से समझते हैं। यहाँ व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनमी 29 वो डोनर टेक्स्ट है जिसने अपनी आंखें अंधी करने वाली शब्दावली दान की। यशाया की पुस्तक वो रिसेप्टर टेक्स्ट है जिसने उन शब्दों को ग्रहण किया। और एक्सेजेटिकल आउटकम यानी नतीजा ये निकला कि कैसे यशाया ने उस पुरानी ऐतिहासिक चेतावनी को उठाकर अपने समय के भ्रष्ट समाज पर एक बिल्कुल नए और प्रासंगिक अर्थ के साथ लागू कर दिया।
ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर देता है और इस विश्लेषणात्मक काम को आसान बनाने के लिए आधुनिक पाठकों के पास एक बहुत ही साधारण लेकिन पावरफुल टूल मौजूद है।
वो क्या है?
क्रॉस रेफरेंस।
क्रॉस रेफरेंस?
हाँ,
वो जो पन्नों के किनारे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं।
हाँ, हम में से अधिकांश लोग क्रॉस रेफरेंस को केवल फुटनोट्स मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर हार्मन के अनुसार ये दरअसल उन प्राचीन लेखकों द्वारा छोड़े गए साहित्यिक सुराग या लिटरेरी ब्रेड क्रम्स हैं।
वाओ, ये नजरिया वास्तव में एक रोमांचक जासूसी काम की तरह लगता है, सुरागों को ढूंढना।
बिल्कुल, और जो लोग इस खोजबीन को और भी गंभीरता से लेना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर हार्मन ने एक विशेष आधुनिक टूल का सुझाव भी दिया है, कनेक्टिंग स्क्रिप्चर न्यू टेस्टमेंट, जो CSB अनुवाद पर आधारित है।
इसमें क्या खास है?
यह संस्करण एक विजुअल गाइड की तरह काम करता है। इसमें पाठ के भीतर ही स्पष्ट उद्धरणों यानी कोटेशंस को नीले रंग में और संकेतों यानी अल्यूजन्स को हरे रंग में रंगा गया है।
अरे वाह, तो पढ़ते हुए ही पाठक को विजुअली पता चल जाता है कि वो किसी प्राचीन ग्रंथ के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।
हाँ, और उस संस्करण की सबसे बड़ी उपयोगिता उसका विस्तृत इंडेक्स है। यदि आप पुराने नियम की कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप पीछे जाकर इंडेक्स में तुरंत देख सकते हैं कि क्या नए नियम में कहीं भी इस विशिष्ट अध्याय का उपयोग किया गया है।
ये तो उन कड़ियों को जोड़ने का एक बेहतरीन साधन है जो सदियों के लंबे इतिहास के नीचे छिपी हुई हैं।
जी, इसके साथ ही डॉक्टर हार्मन दो महत्वपूर्ण आदतें अपनाने की सलाह देते हैं। पहला, गहराई से पढ़ना, यानी रीड डीपली, ताकि छोटे छोटे प्रतीकों और भाषा के मोड़ों पर ध्यान जाए।
और दूसरा
व्यापक रूप से पढ़ना, यानी रीड वाइडली, ताकि पूरी किताब की बड़ी तस्वीर समझ में आए।
तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकाला जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये प्राचीन धर्मग्रंथ केवल अलग अलग युगों में लिखी गई पुस्तकों का कोई रैंडम संग्रह मात्र नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
एक पूरा नेटवर्क जहां पीढ़ियों तक लेखक एक दूसरे के साथ एक वैचारिक संवाद कर रहे थे। वो एक दूसरे के लेखों की लगातार व्याख्या कर रहे थे
और पुरानी सच्चाइयों को अपने समय की नई भाषा और नई चुनौतियों के अनुसार ढाल भी रहे थे।
हाँ, तो ये जो प्राचीन ज्ञान है ये कोई स्थिर या मृत दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो उन लेखकों के हाथों में एक गतिशील शक्ति थी।
जी, ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है।
और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही उत्तेजक विचार के साथ छोड़ जाती है, जिस पर आधुनिक युग के हर विचारक और पाठक को विचार करना चाहिए।
वो क्या?
देखिए, यदि इन प्राचीन लेखकों ने, जैसे पौलुस या यशाया ने, पुरानी और पवित्र समझी जाने वाली सच्चाइयों को अपने समय की बिल्कुल नई परिस्थितियों और हकीकतों के अनुसार रचनात्मक रूप से पुनर्व्याख्यात करने की स्वतंत्रता महसूस की, तो आज के समाज के लिए इसका क्या अर्थ है? क्या आधुनिक पाठकों को भी इन प्राचीन ग्रंथों को केवल एक कांच के बक्से में रखे ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में पढ़ने के बजाय, बजाय इसके कि हम उन्हें बस इतिहास माने, क्या हमें उन्हें आज की अभूतपूर्व दुविधाओं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आधुनिक बायोएथिक्स में गतिशील रूप से लागू करने का तरीका नहीं खोजना चाहिए?
ये बहुत ही गहरा सवाल है
ना?
हाँ।
यदि प्राचीन लेखक अपनी दुनिया में पुराने शब्दों को नया जीवन दे सकते थे, तो क्या आज की इस अभूतपूर्व तकनीकी दुनिया में उन प्राचीन शब्दों का कोई नया चेहरा या प्रोजोपोज नहीं होना चाहिए? ये सोचने वाली बात।
बिल्कुल सोचने वाली बात।
आज के इस ज्ञानवर्धक विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्राचीन सिनेमैटिक यूनिवर्स के साहित्यिक रहस्यों को हमारे साथ खंगालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ।